विश्व दर्पण। श्रोताओ, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है अमरीकी प्रशासन में होने वाला नया बदलाव। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेक्स टिलरसन को विदेश मंत्री पद से हटा दिया। रेक्स टिलरसन बड़े उद्यमी हैं और उनका कारोबार ऐसे भी कुछ देशों में फैला हुआ है जिनसे अमरीका के संबंध अच्छे नहीं हैं। रेक्स टिलरसन ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते, उत्तरी कोरिया के मुद्दे और सऊदी अरब कतर विवाद जैसे अनेक मामलों में ट्रंप से अलग विचार रखते थे। ये बात खुद ट्रंप ने भी टिलरसन को हटाने के बाद मीडिया से बातचीत में कही।
Rex and I have been talking about this for a long time. We got along actually quite well, but we disagreed on things. When you look at the Iran deal, I think it's terrible. I guess he thought it was okay. I wanted to either break it or do something, and he felt a little bit differently. So we were not really thinking the same. With Mike Pompeo, we have a very similar thought process. I think it's going to go very well. Rex is a very good man. I like Rex a lot. I really appreciate his commitment and his service. And I'll be speaking to Rex over a long period of time. I made that decision by myself. Rex wasn't, as you know, in this country. I made the North Korea decision with consultation from many people, but I made that decision by myself.
दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों में गिनी जाने वाली एक्सन मोबिल के सीईओ रह चुके टिलरसन ने विदेश मंत्री पद से हटने के बाद जनता का आभार व्यक्त किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति कोई आभार नहीं व्यक्त किया। इसे भी ट्रंप और टिलरसन के बीच दूरियों का एक चिन्ह बताया जा रहा है।
I received a call today from the President of the United States at a little after noon time from Air Force One, and I've also spoken to White House Chief of Staff Kelly to ensure we have clarity as to the days ahead. What is most important is to ensure an orderly and smooth transition during a time that the country continues to face significant policy and national security challenges. As such, effective at the end of the day, I'm delegating all responsibilities of the Office of the Secretary to Deputy Secretary of State Sullivan. My commission as Secretary of State will terminate at midnight, March the 31st.
टिलरसन को जब विदेश मंत्री बनाया गया था तभी ये मुद्दा उठा था कि टिलरसन की कंपनी रूस सहित उन देशों में भी कारोबार करती है जिनसे अमेरिका की घोर प्रतिस्पर्धा है। तो उस समय अमेरिकी कैबिनेट ने दावा किया था कि रेक्स टिलरसन को दूसरे देशों के साथ बातचीत का व्यापक अनुभव है। साथ ही कहा गया था कि तेल कंपनियों को विदेशों में बहुत ही नपीतुली कूटनीतिक नीतियाँ अपनानी होती हैं और संभवतः यही कारण भी था कि ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री के तौर पर टिलरसन को चुना था। दूसरी ओर ये भी अटकलें थीं कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के रूस से अच्छे संबंध हैं। वैसे ट्रंप और टिलरसन के मतभेदों की खबरें पहले से ही आने लगी थीं। टिलरसन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतभेद की अफवाहों को खारिज किया था, लेकिन ट्रंप को मंदबुद्धि कहने वाले अपने कथित बयान पर वो चुप ही रहे थे। टेक्सास के विचिता फॉल में रहने वाले 65 साल के टिलरसन ने एक्सॉन मोबिल कंपनी में ही अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 1975 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद एक्सॉन ज्वाइन किया था। धीरे धीरे वो अफसर बने और एक्सॉन मोबिल के अमरीका, रूस और यमन के ऑपरेशनों में काम करके अनुभव प्राप्त करते रहे। कहा जाता है कि यदि हेनरी किसिंजर को छोड़ दिया जाए तो टिलरसन का व्लादिमीर पुतिन के साथ जितना संपर्क रहा है शायद किसी और अमरीकी का उतना संपर्क नहीं रहा है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार टिलरसन कहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनका रिश्ता 15 साल पुराना है और दोनों के संबंध काफ़ी गहरे हैं। अगर माइक पोम्पियो की बात की जाए जिन्होंने टिलरसन का स्थान लिया है तो कहा जाता है कि वो दूसरे ट्रंप हैं।
Threat to America is from people who deeply believe that Islam is the way and the light and the only answer. And so as we think about what U.S. policy needs to be, how we will begin to combat this, we need to recognize that these folks believe that it is religiously driven for them to wipe Christians from the face of the earth. They may be wrong. There's some debate about that, what the Quran actually says. They may be wholly misguided. And I will tell you, it is absolutely a minority within the Muslim faith. But these folks are serious, and they abhor Christians, and will continue to press against us until we make sure that we pray and stand and fight and make sure that we know that Jesus Christ as our Savior is truly the only solution.
पोम्पियो को इस्लाम से दुश्मनी है, वो ईरान के साथ होने वाले परमाणु समझौते के कट्टर विरोधी हैं। कुछ गलियारे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरान से किया गया परमाणु समझौता खत्म करने के उद्देश्य से भी ट्रंप ने पोम्पियो को विदेश मंत्री पद सौंपा है। पोम्पियो के बारे में कहा जाता है कि वो क्रूज मिसाइलों की छत्रछाया में कूटनीति को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं। टिलरसन के बारे में एक बात ये कही जाती थी कि कतर से उनके अच्छे संबंध रहे, जिसका इस समय सऊदी अरब, इमारात, बहरीन और मिस्र ने बहिष्कार कर रखा है। इसलिए टिलरसन के हटाए जाने में सऊदी अरब, इमारात, बहरीन और मिस्र को भी खुशी मिली है। टिलरसन ने कतर और सऊदी अरब के बीच विवाद के दौरान कतर को आतंकवाद के समर्थन के चारों देशों के आरोपों से मुक्त ठहराया था। टिलरसन का विचार तुर्की के मुद्दे पर भी अलग था। टिलरसन का कहना था कि तुर्की को अमेरिका के करीबी घटक के रूप में बाकी रखना चाहिए और तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को नाराज़ नहीं किया जाना चाहिए। यूरोपीय देशों की बात की जाए तो अधिकतर यूरोपीय अधिकारियों का मानना है कि टिलरसन ट्रंप प्रशासन के अंतिम समझदार इंसान थे जो अब इस प्रशासन से अलग हुए हैं। व्यापारिक मैदान में यूरोप के साथ अमेरिका के संबंधों में लगातार कड़वाहट आ रही है और इस प्रक्रिया को नियंत्रित रखने में टिलरसन की भूमिका थी, लेकिन अब ट्रंप पूरी तरह मनमानी कर सकते हैं। सीरिया के विषय में भी अमेरिका के रवैये में बदलाव आने की बात कही जा रही है। अमेरिकी सरकार धमकियां दे रही है कि यदि सीरियाई सेना ने रासायनिक हथियारों से हमला किया तो अमेरिका दमिश्क सरकार के खिलाफ कार्यवाही करेगा। इस बीच उन आतंकियों के ठिकानों से सीरियाई सेना को रासायनिक हथियार बनाने वाले कारखाने मिले हैं, जिन्हें अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से मदद मिल रही है। अतः योजना यह है कि इन आतंकी संगठनों से रासायनिक हथियार प्रयोग करवाए जाएं और फिर उसका आरोप सीरियाई सरकार पर लगाकर सीरिया के खिलाफ सैनिक चढ़ाई की जाए। इस बारे में रूसी अधिकारी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। टीकाकारों का विचार है कि विश्व स्तर पर हालात में बुनियादी रूप से बदलाव आ चुका है और इस बदलाव के नतीजे में अमरीका का प्रभाव काफ़ी सिकुड़ चुका है। इसलिए यदि ट्रंप अपने विचार के लोगों को अलग अलग पदों पर बिठाते हैं तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं होगा कि अमेरिका मनमाने रूप से जहां जिस प्रकार चाहेगा गतिविधियां या सैनिक हमले करेगा। जो अधिकारी भी जिम्मेदारियां संभालेंगे वो दुनिया में नई सच्चाई से रूबरू होंगे जो अमेरिका को मनमानी की अनुमति कदापि नहीं देती। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व प्रभारी निदेशक जॉन मैकफॉलिन का कहना है कि पोम्पियो निश्चित रूप से ट्रंप जैसे विचार रखते हैं। ईरान के परमाणु समझौते के बारे में उनका विचार ट्रंप जैसा ही है, लेकिन परमाणु समझौता ऐसा है कि इसमें यूरोपीय देश इसी तरह चीन और रूस भी शामिल है, था इसका विरोध करने की स्थिति में ट्रंप एक बार फिर खुद को अकेला पाएंगे।
I would think that he would pick up the job that that the president gave to the State Department, that is to work with the Europeans and the other parties to the agreement. To see if it can be amped up or changed in some way that would make it more acceptable to the president. I think that's kind of a fool's errand, because the agreement, from my perspective, is a pretty good one. And, you know, and the Europeans and the others involved, particularly the Russians and Chinese, have no stomach for messing with it. So I think that's going to be a tough job. And as usual, I think the president's painted himself into a bit of a corner, because I don't think that's going to get done. And next time the recertification comes up, he may find himself in the position of, oops, that didn't work out. Now, at the same time, you know, there are other people in the government going to be advising him about that, including the CIA and including Secretary Mattis. So,
अलबत्ता कुछ गलियारे ये मानते हैं कि वर्तमान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास सूझबूझ की कमी है, इसलिए यदि उनके अपने विचार जैसे लोग मिल गए तो नतीजों के बारे में सही प्रकार से सोचे बगैर अमरीकी सरकार कोई कदम उठा सकती है जिसका भारी नुकसान अमरीका को सहन करना पड़ सकता है। उत्तरी कोरिया का संकट जिस स्थान पर पहुँच चुका है, वहाँ अमरीका के पास उत्तरी कोरिया से बातचीत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की तो खैर बात ही अलग है। ईरान इस समय इस स्थिति में है कि उसके खिलाफ अमेरिका किसी सैनिक कार्यवाही की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि अमेरिका हमला करे और भाग खड़ा हो। अब अगर अमेरिका ने कोई हिमाकत की तो उसका खमियाजा उसे निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ये बात ईरान के इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्ज़मा सैयद अली खामेनेई कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मारो और भाग लो का ज़माना गुजर चुका है।
تهدید میکردن اون وقتم گفتم دوران بزن و در رو تمام شده।
इस तरह देखा जाए तो अमरीका में होने वाले बदलाव से विश्व स्तर के समीकरणों में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि अमरीकी प्रशासन ने कोई नासमझी की कार्यवाही की तो उसे इसका गंभीर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस संदर्भ में यमन का उदाहरण उसके सामने है, जहाँ बगैर सोचे समझे सऊदी अरब ने हमला कर दिया और फिर बुरी तरह से फंस गया है।